जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद भगवत गीता की जय गौर नेताय की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज अ सोल हरी हरी बोल हरी हरी बोल शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ जय श्री कृष्ण न शास्त्र पर न धन पर न ही किसी युक्ति पर हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर हरी हरी बोल एवरीवन हरी हरी बोल जय श्री राधे कृष्ण हर हर महादेव जय माता की। तो फ्रेंड्स आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और जो हम लोगों को पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स हम सब अपनी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और इस प्रक्रिया में हमारा सरल भगवद गीता का कोर्स भी आरंभ हो चुका है ना, जो कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है हमारी आध्यात्मिक यात्रा में। और घर बैठे बैठे ये भगवद गीता का ज्ञान हमें मिल रहा है, हमें जाने की कहीं जरूरत नहीं है। ऐसी आध्यात्मिक यात्रा ऐसी तीर्थ यात्रा हमारी आरंभ हो चुकी है ना। तो भगवद गीता के श्लोकों में जाने से पहले सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करते हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हम सबकी बुद्धि में विराजमान हो, अपनी विशेष कृपा हम पर बरसाएं ताकि हम सब उनकी वाणी को उनके इंस्ट्रक्शंस को और उनके गीत को अच्छे से समझ सके और अपने जीवन में भी अपना सके। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग चैप्टर 2 अध्याय 2 कर रहे हैं, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली। तो चैप्टर 2 में भगवद गीता का कंटेंट कैसे चलने वाला है उसका एक क्विक रिव्यू है। भगवद गीता सारे शास्त्रों का सार है और चैप्टर 2 भगवद गीता का सार है ना। तो इसमें हमने लास्ट 2 वर्स ही समझे थे तो उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो 47 वर्स में हमने समझा, देखो चार चीजें समझाई है इसमें भगवान ने हमें। सबसे पहले भगवान ने हमें ये समझाया है कि तुम्हारे पास ये राइट तो है कि तुम ड्यूटी अपने अच्छे से करो, दूसरी बात लेकिन फल के प्रति तुम्हें कोई अटैचमेंट नहीं रखनी है। जो भी तुम कर्म कर रहे हैं उनके फलों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, वो डिपार्टमेंट तुम्हारा नहीं है, उसका डिपार्टमेंट मेरे पास है, भगवान कह रहे हैं है ना। फिर तीसरी बात भगवान बता रहे हैं कि कभी भी ये मत सोचो कि जो भी तुम कर रहे हो जो भी फल तुम्हें मिल रहे हैं तुम ये मत सोचो कि उसके कारण तुम हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल बात बताई है भगवान ने, मतलब जो भी सक्सेस मिल रही है तुम्हें या फेलियर मिला उसका क्रेडिट खुद को नहीं देना कि मेरी वजह से हुआ। ये श्लोक पर्सनली मेरे को बहुत ही पसंद है फ्रेंड्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है। इसको हम ध्यान से डीपली इसको ऑब्जर्व करें तो अगर सक्सेस मिलती है किसी व्यक्ति को तो उसके पीछे बहुत सारे हिडन रीजंस होते हैं फ्रेंड्स। जो उसको सक्सेस मिली उसके कर्म काउंट होते हैं, फिर उसकी अपब्रिंगिंग काउंट होगी, उसके साथ जो लोग जुड़े हैं वो लोग काउंट होते हैं है ना, उसका वातावरण जो भी था उसका आसपास का, उसको टीचर कैसे मिले है ना, उसके आसपास के लोग कैसे थे, सारा एटमॉस्फेयर काउंट होता है। और भी बहुत सारे हिडन रीजंस है जिसमें एक व्यक्ति को सक्सेस मिलती है और किसी को अगर फेलियर मिलता है ना उसमें भी कई बार बहुत सारे हिडन रीजंस होते हैं। तो बहुत सारे इनविजिबल फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण हमें सक्सेस और फेलियर मिलती है। जो हम कर्म करते हैं ना, सक्सेस मिल गई उसमें अच्छा हो गया जीवन में, उसका क्रेडिट हम खुद को देते हैं, और अगर कुछ अनफेवरेबल हो गया तो उसका क्रेडिट हम फिर अपने आसपास के लोगों को और भगवान को भी देने से भी नहीं हिचकिचाते हम लोग। और कई बार जो फेलियर्स होते हैं फ्रेंड्स उसमें एक व्यक्ति बहुत गिल्ट में चला जाता है, सालों साल उस गिल्ट में रहता है कि मेरी वजह से ये हो गया। ये सोचना कि मेरी वजह से मुझे सक्सेस मिली है ये भी गलत है भगवान कह रहे हैं, और ये सोचना कि मेरी वजह से ये तकलीफ मुझे मिली है या मुझे फेलियर्स मिले हैं तो ये सोचना भी गलत है। इस तरह से जो तुम्हें सुख आएगा तब भी आप संभाव में चलोगे और जब दुख आएगा तब भी आप संभाव में चलोगे। अगर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस आ जाए है ना, कुछ सक्सेस मिली तो एक व्यक्ति सारा क्रेडिट खुद को दे देता है, और अगर एक व्यक्ति के जीवन में दुख आ जाता है तो देखो दो कारण होते हैं इसमें, या तो हम दुख आएगा तो हम इसका कारण दूसरों को बोलते हैं कि दूसरों की वजह से हुआ है ना, भगवान की वजह से हुआ, या फिर हम खुद को इसका जिम्मेदार मानते हैं है ना। तो दोनों ही सिचुएशंस गलत है भगवान कह रहे हैं। खुद को जिम्मेदार मानेंगे तो डिप्रेशन आएगा लाइफ में है ना। हाँ कुछ नेगेटिव होता है तो जरूर हमें आत्म मंथन करना है कि ऐसी क्या मैं गलती कर रही हूँ और उसको मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ। बार बार एक ही गलती हो रही है, उसको गलती को हमें ठीक करना है और कम से कम इस सिचुएशन में पहुंचना है कि कम से कम मैं उस गलती को रिपीट ना करूं, है ना। लेकिन यही सोचकर कि मैं ही जिम्मेदार हूं, मेरी वजह से ही हुआ ये सब कुछ, ये फेलियर जो मिला है उसकी जिम्मेदार मैं हूं, हमें डिप्रेशन में नहीं चले जाना है और ना ही भगवान को कोसना है और ना ही दूसरे पर्सन को कोसना है ना। तो ब्लेम करने से बचना है। फिर चौथी बात भगवान क्या समझा रहे हैं हमें इस श्लोक में, देखो कुछ लोग सोचते हैं कि भाई सब कुछ किस्मत ही है तो मैं कर्म ही क्यों करूं, है ना। और कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं कर्म कर रही हूं तो मेरे हिसाब से मुझे फल मिलने चाहिए, जो मैंने सोचा बस एग्जैक्ट वही होना चाहिए, है ना। इसलिए हम फिर दुखी हो जाते हैं क्योंकि हर कुछ हमारे हिसाब से तो होता नहीं है, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सोच लेना कि सब कुछ आपकी ही मेहनत है या सब कुछ आपकी ही किस्मत है, ये दोनों ही विचारधाराएं गलत है। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम्हें ये नहीं सोचना कि मुझे अब कर्म ही नहीं करना है मुझे, है ना। तो कर्म तो करना ही है और वैसे ही कर्म किए बगैर तो हम रह ही नहीं सकते फ्रेंड्स, है ना। एक मिनट भी हम, एक सेकंड भी हम, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तो वो जो कुछ नहीं करना भी तो कर्म ही है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि मेहनत कीजिए, उसके बाद का डिपार्टमेंट भगवान पर छोड़ना है, सिंपल बात है। फिर भगवान ने 48 वर्स में कहा कि जो सक्सेस या फेलियर, सुख और दुख, लाभ और हानि, इस सारी अटैचमेंट को त्याग कर जीवन जीता है, संभाव बनाकर चलता है, वैसे जीवन को योग कहते हैं। देखो भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम बैलेंस मेंटेन करो अपनी लाइफ में, अपनी ड्यूटीज में संभाव से चलो, अटैचमेंट मत रखो कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, है ना। अगर तुम उस अटैचमेंट से ऊपर उठकर कार्य करते हो ना तो तुम योग ही करते हो, है ना। देखो अलग अलग प्रकार का योग बताया ना भगवान ने। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भाई समता से करो, ये संभाव ही योग कहलाता है ना। देखो समता क्या होती है, समता अंदर से अंतकर्ण की समता होती है ना, जिसमें मतलब कि कुछ भी हमें मिल रहा है बाहर से, अनुकूल परिस्थिति है या प्रतिकूल परिस्थिति है, सफलता मिल रही है विफलता मिल रही है ना, फेलियर मिल रहे हैं सक्सेस मिल रही है, कुछ भी हो रहा है उसमें सम रहना, प्रशंसा हो रही है या निंदा हो रही है, कार्य सफल हो रहा है या असफल हो रहा है, लाखों रुपए आ जाएं या लाखों रुपए चले जाएं, मतलब अंदर हमारी कोई हलचल ना हो, हमारे अंतकर्ण में कोई हलचल ना हो, सुख में ज्यादा एक्साइटेड ना हो जाए, दुख में ज्यादा डिप्रेस ना हो जाए, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि इस समता का, इस योग का कोई मुकाबला नहीं, सिर्फ और सिर्फ इससे एक व्यक्ति का कल्याण ही होता है। अगर एक व्यक्ति ये सीख ले ना, सबसे बड़ा योग है ये फ्रेंड्स, सुख दुख से ऊपर उठना, जो भी हम बाकी चीजें करते हैं, जो भी हम पुण्य कर्म करते हैं, जो भी हम जप करेंगे दान करेंगे, है ना, व्रत वगैरह करते हैं, वो तो अपना जो हमें जो फल देकर, जो भी पुण्य कर्म हम करते हैं उसका तो फल देकर वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारे हृदय में अगर संभाव आ जाए ना, निष्काम भाव से काम करना आ जाए ना, तो ये नष्ट नहीं होता फ्रेंड्स, है ना। मतलब हमारी बात करने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका, है ना, चाहे हम किसी से बात ही कर रहे हैं, हमारे सोचने का तरीका, हर एक एक्शन हमारे ईश्वर से जुड़ा होना चाहिए, है ना। उसमें समझ होनी चाहिए हम कर क्या रहे हैं, अवेयरनेस। अगर हम इस प्रकार का जीवन जीते हैं ना तो अल्टीमेटली वो ही योग है जी। नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो तो जी। हरि बोल।
हरि बोल। अध्याय दो, श्लोक नंबर 49। हे धनंजय, बुद्धि योग के द्वारा कामनाओं से युक्त कर्मों से निश्चित ही दूर रहो, भक्ति भाव से श्री भगवान का आश्रय लेने का प्रयत्न करो, क्योंकि कर्म फल का भोग करने वाले तो कृपण होते हैं। आई रिपीट, हे धनंजय, बुद्धि योग के द्वारा कामनाओं से युक्त कर्मों से निश्चित ही दूर रहो, भक्ति भाव से ही श्री कृष्ण का आश्रय लेने का प्रयत्न करो, क्योंकि कर्म फल का भोग करने वाले तो कृपण होते हैं। हरी हरि बोल।
हाँ जी, हरी हरि बोल। कामनाओं से युक्त कर्म मतलब सकाम कर्म, जिसमें हम फल की इच्छा रख लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इस बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही तुच्छ है, इसलिए तुम इससे दूर रहो। तुम क्या करो, सिर्फ भक्ति भाव से श्री भगवान का आश्रय लेने का प्रयत्न करो, क्योंकि कर्म फल का भोग करने वाले अत्यंत दीन होते हैं। दीन मतलब वो वाले दीन नहीं जो एक्चुअली दीन होते हैं, होते हैं ना कई लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं किसी के लिए भी, है ना, बहुत कुछ होता है उनके पास लेकिन उनको लगता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, दीन वाली सिचुएशन में रहते हैं। तो मतलब उनके लिए ये वर्ड यूज हुआ हुआ है कि भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि फल की आसक्ति वाले, फल की वासना वाले अत्यंत दीन है, है ना। देखो 41 श्लोक में हमने समझा था कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, है ना। मतलब हम जिसको सिंपल वे में हम इसको समझें तो जो लोग भगवान के रास्ते पर चलते हैं, स्पिरिचुअलिटी का जीवन जीने लग जाते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, जिनके अंदर मतलब ये फोकस आ जाता है कि मुझे आगे बढ़ना है, भगवान के रास्ते में आगे बढ़ना है, मतलब अपना कल्याण करने के बारे में सोचने लग जाते हैं कि नहीं यार मैं जहां पे हूं ना, मुझे वहां पे चीजें समझ नहीं आती, वहां पे मेरी लाइफ बेटर नहीं है तो मुझे क्या करना है, मुझे इससे आगे चलना है ना, इससे आगे कैसे चल सकते हैं भगवान के साथ जुड़कर, है ना। तो उनके अंदर एक डिजायर आ जाती है, मतलब अब सबसे पहले तो अपना कल्याण के बारे में सोचते हैं, है ना। इसलिए उनको स्पिरिचुअलिटी का रास्ता बेस्ट लगता है और वो उस रास्ते पे दृढ़ निश्चय होकर चल पड़ते हैं। तो उनकी दृढ़ निश्चय बुद्धि होती है, एक तो ये होगी, या दिव्य बुद्धि भी कह सकते हैं हम, सिंपल हमने लेना तो इसको दिव्य बुद्धि भी कह सकते हैं, है ना। क्योंकि बुद्धि योग के बारे में हम समझ रहे हैं अब 49 वर्स में, तो थोड़ा इसके बारे में जानना जरूरी है ना। और फिर हमने 41 श्लोक में समझा था जो निश्चय रहित होते हैं, है ना, जिनके अंदर मतलब संसार के भोगों को भोगने की इच्छा रहती है, संसार के सुखों में जो सुखी रहते हैं, है ना, बस यही उनके अंदर डिजायर रहती है ना, संसारिक सुख भोगने की, है ना। और जो मान सम्मान प्राप्त करने में लगे रहते हैं, किस तरह से मेरा नाम हो जाए बस, किस तरह से मेरा सम्मान बढ़ जाए, इन्हीं में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं ना। तो उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बंटी होती है, क्योंकि उनका यही दिमाग चल रहा होता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है ना। तो उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बंटी होती है, तो ऐसा व्यक्ति संसारी होता है। और ऐसा व्यक्ति क्या करता है, सिर्फ उसका लक्ष्य भोग भोगना और चीजें इकट्ठी करना, ऐसे व्यक्ति का लक्ष्य रहता है। उसकी एक बुद्धि नहीं होती, बल्कि कामना रूपी शाखाओं वाली अनंत बुद्धियां होती है। ये तो होगी बुद्धि की बात, कि दो प्रकार की बुद्धि होती है। ये 41 वर्ष में भी हमने समझा था कि ये हमने डिसाइड करना है, हमने किस बुद्धि की तरफ चलना है। हम भगवान की बातें अगर मानते हैं तो हमारी दृढ़ निश्चय बुद्धि हो जाती है, है ना। अगर हम भगवान की बातें नहीं मानेंगे, अपने ही माया जाल में फंसे रहेंगे, तो फिर वो बुद्धि दृढ़ निश्चय नहीं हो पाएगी, वो भगवान की तरफ भी नहीं बढ़ पाएगी, है ना। सिंपल बात तो ये होगी, है ना। दूसरी बात, हम थोड़ा सा योग के बारे में समझते हैं, कि योग भगवद गीता में बार बार आएगा, है ना। देखो इसमें बुद्धि योग के बारे में बताया गया है 49th वर्स में। तो योग देखो हमारी ही पुरातन संस्कृति का हिस्सा है, तो इसके लिए हमें बहुत ही ग्रेटिट्यूड होना चाहिए हमारे अपने पुराने जो संत महात्मा है, ऋषि लोग हैं, उन्होंने ही योग को हमारे जीवन के साथ इंट्रोड्यूस करवाया है। एक्चुअली ना, हम लोग अपनी संस्कृति को कुछ नहीं समझते, हमें क्या लगता है कि बाहर से कुछ ऐसी चीज आएगी ना, है ना, तो वो ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होगी। जो है, जो भारत में है, वो चीजों को हम ज्यादा प्रेफरेंस ही नहीं देते हैं, इसलिए हम अपने स्क्रिप्चर्स को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। योग शब्द जैसे ही आता है ना, तो हमें लगता है कि इसका मतलब होगा कोई, मतलब फिजिकल एक्सरसाइजेज वगैरह, कोई आसन वगैरह, है ना, यही हमारे माइंड में आ जाता है। बल्कि योग यही नहीं होता फ्रेंड्स, योग मतलब जुड़ना, किसी भी चीज को जानने के लिए जुड़ना। जैसे अभी हम भगवद गीता से जुड़ रहे हैं, तो इनका एक एक वर्ड हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो ध्यान लगाना मतलब कॉन्सेंट्रेशन लगाना, है ना, और इसका मतलब कनेक्टिंग टू गॉड भी होता है, परमात्मा के साथ जुड़ना। तो मतलब योग हमें सिखाता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। हम जानवर से इंसान बने, अब इंसान से ईश्वर तक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो ईश्वर तक पहुंचना है ना, ये योग का ही रास्ता है। मतलब हम हर दिन आज से बेटर कुछ करें, तो एक तो ये रास्ता है ईश्वर तक पहुंचने का। मतलब हमारा जीवन ही ऐसा होना चाहिए ना, कि जो भी हम कर रहे हैं, कुछ भी जो हम कर रहे हैं, वो मेरा बेहतर से बेहतर होता जाए। चाहे आप कुछ सोच ही रहे हो, है ना, इवन किसी से बात कर रहे हो, है ना, या कोई काम कर रहे हो, सिर्फ यही नहीं कि है बस मेरे को वही दो चार लोगों से अच्छे से बात करनी है, बाकी अपना मनगढ़ंत जीवन जीना है, या वही दिन में दो टाइम भक्ति कर लेनी है, और अपने सिलेक्टेड लोग रखे होते हैं हमने, बस इनके साथ हमें अच्छी सी बात करनी है, और बाकी हमें कुछ पता नहीं होता किसी के साथ कैसे बात करनी है, ना। तो ध्यान देना है, ऑब्जर्व करना है अपने आप को, कॉन्सेंट्रेशन से अपनी सोच को देखना है कि हम सोच क्या रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं, हम सोच कैसे रहे हैं। तो इस रास्ते पर भी हम ईश्वर तक पहुंचते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कि परमात्मा से प्रेम की, है ना, परमात्मा से प्रेम करना है, वो करेंगे कैसे फ्रेंड्स, कभी सोचे आपने? जब हम इंसान को तो प्यार कर नहीं सकते हैं, तो परमात्मा को कैसे प्यार कर सकते हैं, पहले मुझे ये बताओ, है ना। तो पहले जर्नी ऐसे स्टार्ट होती है, पहले हमें भगवान ने कहा है ना कि ये सारा संसार ही मेरा घर है, वासुदेव कुटुंबकम। जब हम अपने चार लोगों से उठकर बाकी लोगों के बारे में सोचना शुरू करते हैं ना, कि सारा संसार ही तो मेरा घर है, सब कुछ छोड़कर मैंने चले जाना है, तो क्या ये मैं या मेरा मेरा करती रहती हूँ, वैसा क्यों नहीं रहना है जैसा भगवान मुझे कह रहे हैं, है ना। तो एक तो ये रास्ता है भगवान के साथ जाने का, और इसी को योग कहते हैं, है ना। भगवद गीता में इसी रास्ते की बात की गई है, मतलब वासुदेव कुटुंबकम की बात ही कर रहे हैं ना भगवान भगवद गीता में। तो इस तरह से जीवन जीना योग कहा जाता है फ्रेंड्स। मतलब ये बुद्धि योग ना, जो बात हुई है 49th वर्स में, भगवद गीता के ही स्मारक की और हमें इंट्रोड्यूस करता है ना, जो कि हमें समता की भावना अपने अंदर लाने की हमें आज्ञा देता है। मतलब जो अपने द्वंद होते हैं ना, सुख दुख, मान अपमान राग द्वेष इन सबसे ऊपर उठने के लिए हमें सीख दे रहा है ना। कुछ भी हो रहा है लाइफ में, लाभ हो रही है, हानि हो रही है ना, दुख मिल रहे हैं, सुख मिल रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या होना चाहिए कि सब टेम्परेरी है ना, ये सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा, है ना। तो इस भावना से लाइफ को जीना बुद्धि योग कहा गया है। सिंपल भगवान हमें इस श्लोक में ये समझा रहे हैं कि बुद्धि योग से मतलब जब हम भगवान की बातों को जब हम बुद्धि में रखते हैं, है ना, जो भी हमें भगवद गीता में भगवान हमें समझा रहे हैं, जो भी गाइड कर रहे हैं, उन सब बातों को अपनी बुद्धि में रखना और उसके अकॉर्डिंगली अपनी ड्यूटीज करना। तो कैसे करेंगे, जब उसको हम ध्यान में रखेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, कुछ भी जब हम करेंगे तो इस बुद्धि योग को माइंड में रखना, मतलब भगवान की बातों को माइंड में रखना है, तो फिर क्या होगा, जो हमारी बुद्धि है वो ही हमारी बेस्ट काउंसलर बन जाएगी। फ्रेंड्स, हमें बाहर किसी काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, जो हम भटकते फिरते हैं, जब हम डिप्रेशन में पड़ जाते हैं, है ना, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम जो लोगों को सुनाने के लिए घूमते फिरते हैं ना, हमें किसी के पास नहीं जाना पड़ता अपने दुख सुनाने के लिए, है ना। देखो, दो रथों की तुलना के टॉपिक में हमने समझा था, कृष्ण भगवान और अर्जुन के रथ में दो रथ थे, मतलब है ना, तो एक रथ में उसकी जो बुद्धि थी वो दूषित बुद्धि थी ना, लेकिन जो दूसरा रथ था उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, एक में दिव्य बुद्धि आ गई और एक में दूषित बुद्धि आ गई, जो मैंने आपको बताया अभी, बुद्धि के दो प्रकार की होती है, है ना। तो हमें जो दूषित बुद्धि वाला जो रथ है ना, हमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वाले रथ में एंट्री करनी है, मतलब भगवद गीता पढ़ के। करनी कैसे है, जब हम भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनेंगे, उनको अप्लाई करेंगे जीवन, जो हमारी दूषित बुद्धि है ना वो अपने आप ही प्योर होती जाती है ना, भगवान की बातें हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है प्रतिशत में, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली जब हम काम करते हैं ना, उसको बुद्धि योग कहते हैं फ्रेंड्स, बुद्धि योग से कर्म करना। तो सारथी की सीट बुद्धि की सीट है ना, इंटेलिजेंस की सीट है, जिसमें अर्जुन ने भगवान को बिठाया है। भगवान को बुद्धि में बिठा लीजिए और बुद्धि योग से कामनाओं से युक्त कर्मों से दूर रहो, मतलब सकाम कर्मों से दूर रहो, मतलब इस योग के द्वारा, इस टेक्निक के द्वारा कामनाओं से युक्त कर्मों से दूर रहो, मतलब जो भी हम मटेरियल डिजायर्स के बेस पर काम करते हैं ना फ्रेंड्स, उससे हमें दूर रहना है। देखो, गोलोक एक्सप्रेस का ABCD मॉडल हमने पढ़ा है, उसमें डी है डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। देखो, जिंदगी में ज्यादातर हम लोग ना व्यर्थ की एक्टिविटीज में, टाइम पास वाली गतिविधियों में फंसे रहते हैं, है ना। और भगवान ने हमें ये मनुष्य जीवन क्या टाइम पास के लिए दिया हुआ है, और ये टाइम पास करते हमने पूरा जीवन अपना व्यर्थ कर दिया हुआ है ना। आप देखो, हमारे पास 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे में वैसे तो हमारे 6-7 घंटे की नींद सफिशियंट होती है, 6 घंटे की नींद भी सफिशियंट होती है, लेकिन चलो 8 घंटे भी हम सो गए, है ना, 10 घंटे चलो हमने अपने काम के लिए रख लिए, 18 घंटे हो गए, अब 6 घंटे हमारे पास है जिसमें हम व्यर्थ की गतिविधियां करते हैं फ्रेंड्स। 10 घंटे भी चलो हमने काम कर लिया, मान लो हम हाउसवाइफ हैं या हम जॉब पे जाती हैं, है ना, तो इससे ज्यादा तो नहीं हम काम करते, लेकिन वो 6 घंटे, 4 से 6 घंटे फ्रेंड्स हम व्यर्थ की गतिविधियों में बिता देते हैं, है ना। तो उसमें कम से कम भी 1 घंटा हम सोच लेना कि 1 घंटा हमें सिर्फ अपने लिए रखना है, उसमें चाहे मैं अपनी मेडिटेशन करूं, चाहे मुझे मंत्र जाप करना है, है ना, उसमें चाहे मुझे भगवान के साथ कुछ बात करनी है, अपने साथ मुझे कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटी करनी है ना। जब हम ये करेंगे ना, डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन की तरफ चलेंगे ना, तो बाकी जो हमारा जीवन है ना उसमें भी शांति और हैप्पीनेस आनी शुरू हो जाती है ना। लेकिन पहले जरूरी है कि हमें जो भी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताई गई हैं, जैसे कि मंत्र जाप करना, मेडिटेशन करना, भोग लगाना, आरती करना, अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, स्क्रिप्चर्स पढ़ना, है ना, कोई भी टाइम आप डिसाइड कर लो कि हमने पूरा दिन में एक टाइम आरती करनी है, तो वो टाइम आप डिसाइड कर सकते हो, सुबह का या रात का, है ना, व्रत करना, ये सब हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमें करनी ही करनी है। कुछ भी हो जाए, मुझे 1 घंटा अपने लिए निकालना ही निकालना है। मान लो आप कहीं चले जाते हो, किसी घर चले जाते हो, या कहीं आप ट्रैवलिंग में जाते हो, तो आप टेलीकाउंटर लेकर जा सकते हो, है ना। उसके लिए लेकिन करना क्या है, थोड़ा गपबाजी छोड़नी पड़ती है कि मेरे को इधर उधर की फालतू गप्पे मारनी है, इधर उधर के फोन घुमाने हैं ना। तो वो कम से कम हम 1 घंटे से तो शुरुआत करें अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की। 1 घंटा तो हम भगवान के लिए निकाल नहीं सकते हैं, अपने लिए नहीं निकाल सकते हैं, और हमें पूरी दुनिया की खबर होनी चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। बस इसमें हमें नहीं चूकना है ना, कि दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, रिलेटिव्स के घर क्या हो रहा है, मुझे वो पूरा जानना, लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या हो रहा है, मुझे वो नहीं जानना। उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है ना, कि मैं अपने घर में कैसे कुछ ऐसा बदलाव करूं, क्या मुझे करना चाहिए कि मेरी लाइफ बेटर हो जाए, मेरी फैमिली की लाइफ बेटर हो जाए। हमें क्या लगता है कि दूसरे मेरी लाइफ बेटर करेंगे, हम दूसरों पे इतने डिपेंडेंट है, क्योंकि हम खुद कुछ नहीं करना चाहते, हम खुद उलझे रहते हैं फालतू दुनियादारी में, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई पर्पज नहीं है, है ना। देखो जो भी टाइम पास की गतिविधि हम करते हैं ना फ्रेंड्स, वो हमारी मटेरियल डिजायर पर ही बेस्ड होता है। अगर हम फोन पर घंटों घंटों लगे रहते हैं तो क्या ये हमारी ड्यूटी है? जो भी 6 घंटे हम वेस्ट करते हैं वो हमारी ड्यूटी नहीं होती फ्रेंड्स, ठीक है। कभी तो कहीं जाना होता है, कुछ जरूरी चीजें भी है, कोई मैरिज अटेंड करनी है, कहीं पे जाना है, उन चीजों की बात नहीं हो रही है, वो चीजें नहीं बोल रहे हैं हम आपको कि नहीं करनी है। लेकिन जो टाइम पास की गतिविधियां हम करते रहते हैं फ्रेंड्स, फोन पर घंटों घंटों लगे रहना, निंदा चुगली में पड़े रहना, क्या ये हमारी ड्यूटी है? टीवी पर फिल्में देखते रहना, फालतू के जो सीरीज है आजकल उनको देखते रहना, है ना, और बच्चों पर क्या असर हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं सोचना, शॉपिंग करते रहना, सोते रहना, पार्टीज करते रहना, आजकल ट्रेंड है पब में चलो फ्राइडे नाइट है चलो चलते हैं, है ना, वहां पे ड्रिंक्स करेंगे, तो क्या ये हमारी ड्यूटीज है? क्या ये हमारी ड्यूटीज है या हमारी कामनाएं हैं, हमारी डिजायर्स है, है ना। तो भगवान हमें समझा रहे हैं कि अगर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी है ना, है ना, भगवान के रास्ते में आगे बढ़ना है ना, कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। देखो अगर हमें भगवान के रास्ते में भी बढ़ना है ना, स्पिरिचुअल लाइफ भी जीनी है, और हम जो लाइफ जी रहे हैं बस उसको भी जीतती जाए, तो ये दो नावों में पैर नहीं हम रख सकते ना। बस वो जो टैग लाइन है ना गोलोक एक्सप्रेस की, बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल, उसको हमेशा याद रखना है ना। मतलब हमें इस तरह की एक्टिविटीज से दूर रहना है अगर हमें स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है, भगवान के रास्ते में आगे बढ़ना है, तो हमें इस तरह की एक्टिविटीज से दूर रहना है पहली बात। और दूसरी लाइन में हमें समझा रहे हैं भगवान कि कंप्लीटली भगवान का आश्रय लीजिए, कंप्लीटली मेरा आश्रय लो, भगवान खुद हमें बता रहे हैं। देखो हमारी लाइफ का पर्पज होना चाहिए फ्रेंड्स कि मुझे भगवान से जुड़ना है ना, मुझे एथिकली अपनी लाइफ जीनी है, मैं भूल गई हूँ, मैं खो गई हूँ दुनियादारी में, लेकिन मेरे अंदर से ये भाव होना चाहिए कि मुझे अब इस रास्ते में दृढ़ निश्चय के साथ चलना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है ताकि मैं उनको याद रख सकूं, है ना, अंदर जो हमारा इतना सारा दुनियादारी का कचरा होता है उसको मैं बाहर निकाल सकूं और नए संस्कार बना सकूं और कंप्लीटली अपने जीवन को भगवान पर आश्रित कर दूं, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जब दुनियादारी के साथ डील करता है ना, जब वो भगवान पर कंप्लीटली सरेंडर कर देता है, तो ऐसा व्यक्ति फ्रेंड्स लाभ हानि, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, सफलता असफलता आदि सब पर समान भाव रखने लग जाता है, समभाव में आना सीख जाता है, राग द्वेष नहीं करता, है ना। तो ऐसा व्यक्ति संसार से ऊंचा उठ जाता है। फिर भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जितना कर्म फल को भोगना चाहता है वो कृपण है, वो दीन है। देखो जितना ज्यादा एक व्यक्ति ना चीजों को भोगने की इच्छा बढ़ा लेता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, वैसे इंसान को भगवान ने कृपण कहा है, उतना ही ज्यादा वो दुखी हो जाता है, जितनी ज्यादा वो चीजों से अटैचमेंट बना लेता है। देखो डिजायर्स हमारे आगे आगे होती हैं, हम उसके पीछे भाग रहे होते हैं, एक डिजायर पूरी हो जाती है ना, अभी उसका हम पूरा इंजॉय भी नहीं कर पाते हैं तो दूसरी डिजायर मन में आ जाती है, 10 लाख की गाड़ी ले लेते हैं लेकिन पड़ोसी की देख ली 20 लाख की गाड़ी, तो हमारे मन में भी डिजायर आ जाती है कि यार मुझे भी ये लेनी है ना। और जब डिजायर्स पूरी नहीं होती तो फिर हम परेशान हो जाते हैं, उतने ही हम डिप्रेस होते जाते हैं, और जितनी ज्यादा हम भगवान की बात मानेंगे तो कोई डिप्रेशन नहीं आता लाइफ में, जर्नी इंजॉय कर पाते हम लोग, है ना। हम ये सोचे कि सब कुछ तो भगवान ने दी है, वो 10 लाख की गाड़ी भी तो भगवान ने दी है मुझे, है ना, सब कुछ तो भगवान दे रहे हैं मुझे। आप फ्रेंड्स आज से 10 साल पहले का जीवन देखो ना, आपने जो कुछ भी डिजायर की होगी ना, ऑलमोस्ट डिजायर भगवान ने पूरी की होगी आपकी, और आज से 10 साल पहले आप जो कुछ भी थे ना, आज आप उससे बेटर सिचुएशन में आ गए होंगे। हाँ सुख दुख तो लगे रहेंगे ना, सुख दुख तो आने ही है जीवन में, थोड़ी 10 साल में सुख दुख नहीं आने, लेकिन जो भी डिजायर्स मैक्सिमम आपने की होंगी ना वो पूरी की होगी भगवान ने। लेकिन फिर भी क्या हमने कभी ग्रेटिट्यूड किया, क्या भी भगवान के प्रति कभी भी आभार व्यक्त किया, है ना। जब हम ग्रेटिट्यूड बनाकर चलते हैं ना फ्रेंड्स, तभी हम हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जो जितना ज्यादा ये सोचता है ना मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये फायदा हो जाए, उतनी ज्यादा उसकी लाइफ में चिंताएं हो जाती हैं फ्रेंड्स। क्योंकि जितना ज्यादा हमारे लाइफ में डिजायर्स आएंगी उससे क्या होगा, फिर जब पूरी नहीं होंगी तो फिर दुखी आएगा जीवन में। तो दो चीजें होती हैं, अगर चीज पूरी मिल गई, मान लो कोई चीज की हमने डिजायर की, मान लो मैंने एक घर की डिजायर की, या मान लो मैंने सोचा कि बेटा मेरा IAS बन जाए, तो मान लो मेरी डिजायर पूरी होगी, तो क्या वो कंप्लीट बस उसके बाद ऐसा होगा कि हमारी डिजायर, हमारी और कोई डिजायर नहीं आएगी? फिर हमें लगेगा कि यार उसको अच्छी जॉब मिल जाए, है ना, चलो जॉब तो मिल ही जाती, फिर हमें लगेगा उसके उसकी अच्छी लड़की मिल जाए, उसको कोई IAS लड़की भी मिल जाएगी, है ना, नहीं मिलेगी तो फिर हम दुखी हो जाएंगे, है ना। और अगर उसने IAS नहीं कंप्लीट हुई तब भी हम दुखी हो जाते हैं कि यार देखो उसकी IAS नहीं हुई, देखो उसने बहुत मेहनत की उसकी IAS नहीं हुई, है ना, तो दोनों सिचुएशन में हम दुखी रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ बहुत खुश हो जाएंगे, खुश होते भी हैं तो बहुत थोड़े से टाइम के लिए खुश होते हैं फ्रेंड्स, है ना। इसलिए हम इस जर्नी को कभी इंजॉय नहीं कर पाते, हम आती समझ ही नहीं पाते हैं। ये खुशी ऐसे नहीं है कि ये बात मेरी पूरी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, है ना। कुछ मेरी डिजायर है मान लो तो वो पूरी हो जाएगी तो बस मैं खुश हो जाऊंगी, बस ये लास्ट, ऐसा नहीं होता कभी। जब तक कि आज में खुश नहीं ना रहते हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, है ना। अगर मैं भगवद्गीता पढ़ रही हूँ तो मुझे उसमें खुश होना चाहिए कि यार मेरी मतलब इतनी बड़ी इच्छा थी मेरे को भगवद्गीता पढ़ने की, तो कैसे मेरी भगवान ने ये डिजायर पूरी की, है ना, कैसे एक डिवाइन प्लान हुआ और कैसे ये सब चीजें मेरी जिंदगी में आई, ना। तो ये खुशी की बात नहीं, और इससे ज्यादा क्या हैप्पीनेस चाहिए मुझे कि कुछ भी जब मेरे लाइफ में होता है तो मुझे लगता है कि यार तुझे क्या करना है, तुझे अपने भगवद्गीता पढ़नी है ना। अब ये जो दो तीन श्लोक मैंने करवाया ना, मुझे एक्चुअली कुछ स्ट्रेस था, वो स्ट्रेस से मैं इन दो तीन श्लोकों से ही निकली, है ना। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ 47, 48, 49, 50, ये तीन चार श्लोक मैंने करवाए ना, तो मतलब उसमें भगवान ने जो कहा ना, मतलब एग्जैक्ट मेरे अंदर वो घुस रहा है कि भाई अच्छा तुम्हें ये करना, तुम बहुत बातें करती हो ना, तुम्हें मैं टेस्ट करता हूँ कि तुम अभी कहाँ पे हो, तुम्हारा कहाँ पे लेवल है, ना। हमें लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो ये भी समझ आ गया, मुझे तो ये भी समझ, लेकिन जब भगवान टेस्ट लेते हैं ना तब हमें समझ आता है एक्चुअली हम हैं कहाँ पे, है ना। तो ठीक है, लाइफ में टेस्ट आते हैं तो हमें उसमें भी पास होकर दिखाना, अच्छे नंबर लेकर दिखाने, है ना। तो ये छोटी बात है कि भगवद्गीता हमारे जीवन में आई है ना, इकट्ठे मिलकर हम अपनी फैमिली के साथ चाय पी रहे हैं, तो ये क्या छोटी बात है कि हम इकट्ठे मिलकर एक खुशी वाले माहौल में चाय पी रहे हैं, उसमें भी खुश नहीं होना हमें? नहीं, जब तक मैं 5 कमरे का घर नहीं ले लेती तब मैं खुश नहीं होंगी, जब तक मेरे पास 40 लाख की गाड़ी नहीं ले जाती तब तक मैं खुश नहीं होंगी। अरे ये डिजायर, ये मृग तृष्णा है फ्रेंड्स, ये कभी खत्म नहीं होंगी हमारी डिजायर्स। जितना जल्दी हम समझ जाए ना इन चीजों को, उतना ही हम अपनी इस जर्नी को एंजॉय कर पाए। पहले की लाइफ में हमने यही किया, कुछ अलग नहीं था, कभी हमने आज में रहना एंजॉय नहीं किया, है ना। यही था कि बस चीजें मिल जाए, मेरी डिजायर्स पूरी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी। मिली भी है वो चीजें, लेकिन कभी भी खुशी तो मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं की। थी भी तो वो कुछ थोड़े दिन की, कुछ टाइम की खुशी, 2-4 दिन की खुशी, इससे ज्यादा नहीं मैंने एक्सपीरियंस की, है ना। और अब भगवद्गीता पढ़ने से क्या होता है, मैं अपने घर से बाहर गार्डन ही देख रही होती हूँ ना, तो मुझे उसमें ही खुशी मिलती है, उन पेड़ों को देखने में, उन पक्षियों को देखने में अलग ही लेवल का आनंद मिलता है। अपने अकेले रहने में मुझे अलग ही लेवल का आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, मुझे लगता है मैं अकेले रह के बहुत कुछ सीख पाती हूँ, है ना। तो मतलब कि हमारा सोचने का नजरिया जब तक हमने नहीं बदला ना, तो समझ लो हमारा भगवद्गीता हमें कुछ हेल्प नहीं कर रही है। तो सोचना क्या है कि हमें थोड़ी कमी हो रही है ना, तो उसके लिए क्या करना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, सिंपल बात है। देखो भगवान की बातें हम मानते हैं तो कोई डिप्रेशन नहीं आता लाइफ में, ये तो फॉर श्योर है ना। फॉर एग्जाम्पल, हायर डिजायर्स को पाने के लिए लोअर डिजायर्स को फ्रेंड छोड़ना पड़ता है। आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, है ना, मान लो किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने है, या मान लो किसी के बच्चे को IIT करनी है, तो उसकी जो भी डिजायर उसके मन को भटकाती है कि चलो मूवी देख लेते हैं, है ना। उसको फ्रेंड उसको बोलता है चलो आज मूवी देख लेते हैं, चलो आज मैच देख लेते हैं, चलो आज शॉपिंग कर लेते हैं, है ना। तो क्या उसको चले जाना चाहिए मूवी देखने, मैच देखने या शॉपिंग करने, उसको चले जाना चाहिए? या उसको कहना चाहिए कि नहीं मुझे पढ़ना है, मेरा एग्जाम जब तक नहीं होता मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो मजा लेने वाली डिजायर्स को छोड़ना पड़ता है ना। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, मान लो आपको 10th क्लास भी किसी को क्लियर करनी है, तब भी तो ये वाली डिजायर्स को छोड़ना ही पड़ता है ना, मजा लेने वाली डिजायर्स छोड़ना पड़ता है कि भाई मुझे टीवी नहीं देखना है, या पहले तो पेरेंट्स को छोड़ना पड़ता है, मैंने ये देखा है ना, आप टीवी देख रहे हो, आप वेब सीरीज हर वक्त लगा के रखते हो, फिल्में देखते रहते हो, तो आपके बच्चे भी यही सीखेंगे फ्रेंड्स। उनको सिखाने के लिए पहले हमें सीखना है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सीख जाएं पर मैं ना सीखूं, ऐसा कभी नहीं होगा ना। पहले मुझे सीखना है, पहले मुझे अपना टीवी बंद करना, पहले मुझे भगवद गीता पढ़नी है, ताकि बच्चे हमसे सीख सके, बच्चों को भी लगे कि नहीं टीवी देखना इज नॉट इम्पोर्टेंट, भगवद गीता पढ़ना इम्पोर्टेंट है, मेरे को अपने 10th क्लास क्लियर करना इम्पोर्टेंट है, टीवी देखना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो हम एक साल कम से कम टीवी तो बंद कर ही सकते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते। जैसे मैंने अपने दोनों बच्चों का टाइम किया था, मेरा अभी तक टीवी में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई केबल नहीं है मेरे घर में अभी, मतलब आई थिंक 2 साल से नहीं है केबल कनेक्शन, क्योंकि बेटा मेरा 12th में है, तो वो उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो मैंने नहीं लगाया, मेरे हस्बैंड लैपटॉप पे देख लेते हैं, तो मुझे जरूरत नहीं लगी, मुझे देखना नहीं होता है, और मेरा बेटा भी नहीं देखता, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं देखता, वो लैपटॉप पे कुछ देख लेता है जो भी उसको देखना है, मैथ से रिलेटेड है या कुछ भी उसको देखना है तो वो अपने लैपटॉप पे देख लेता है, लेकिन घर में मेरे केबल कनेक्शन नहीं है 2 साल से। और मेरा जब बेटा 10th में था बड़े वाला, तब भी मेरे घर में मैंने केबल कनेक्शन कट कर दिया था, है ना। तो ये चीजें पहले हमें करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। कुछ भी सिखाना है बच्चों को पहले हमें करना है। तो अगर आपने ये सोच लिया है ना कि मुझे भगवान के रास्ते पर एथिकली अपना जीवन जीना है, सिंपल मुझे यही जीवन जीना है जो भगवान कह रहे हैं, मुझे बस उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ जीनी, तो इसके ऊपर की क्या डिजायर्स होंगी फिर? इसके ऊपर की तो कोई डिजायर्स नहीं होंगी ना। बाकी जो लोअर लेवल के डिजायर्स है वो अपने आप ही परमात्मा पूरी करते हैं, उसमें हमें कुछ बोलना भी नहीं पड़ता। फिर ऐसे ऐसे डिजायर्स पूरी होती है फ्रेंड्स की आपने सोची भी नहीं होती। इसके लिए नहीं हमें चलना कि हमारे वो डिजायर्स पूरी हो जाएंगी तो हमें भगवान से जुड़ना है। सब चीजें पूरी होती है, मतलब लोअर लेवल के डिजायर्स पहले भगवान वहीं से आपको मतलब समझा रहे होते हैं कि ले ये भी ले, चल ये भी ले, तब तू कुछ और कर, है ना, तेरी लाइफ को मैं कंफर्टेबल करता हूँ, तू अब मेरी रास्ते में आगे चल, है ना। तो मतलब पहले तो हमें ये समझना है कि हमें भगवान के रास्ते में चलना है या नहीं चलना। अंदर से पहले तो यही स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए कि मुझे इस रास्ते में चलना है या नहीं चलना, है ना। तो वो जो फल की इच्छा ना फिर वो स्पिरिचुअल होगी, है ना, कि जो भी सुख दुख मिलेगा इस रास्ते में वो प्रभु की इच्छा है। भगवान चाहते हैं कि मैं इस रास्ते में चलूं, और अगर इस रास्ते में चलते हुए अगर मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को कुछ भी गाइड कर सकती हूँ तो मुझे करना है, हम सबको करना है। और यही प्रभु को मेरी सेवा है कि मेरे माध्यम से कुछ भी थोड़ा भी किसी की लाइफ थोड़ी सी भी चेंज हो पाती है, तो यही मेरी प्रभु को सेवा है। भगवान चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं, है ना। अगर हमारा लाइफ चेंज होती है तो हमारी मॉरल ड्यूटी है फ्रेंड्स कि हम दूसरों को भी समझाएं, दूसरों को भी गाइड करें, दूसरों को भी सत्संग तक लेकर आए। आप खुद समझा सकते हो तो आप समझाओ, आपको लगता है कि इनको सत्संग की जरूरत है तो आपको आपकी मॉरल ड्यूटी है। ये नहीं कि अब मेरी लाइफ बदल गई तो आप मुझे क्या लेना है लोगों से, है ना। तो फल की इच्छा क्या हो गया, फिर स्पिरिचुअल होगी। तो जब आप इस भाव में आ जाते हो ना तो ऑटोमेटिकली फिर सांसारिक फलों की इच्छा का आप त्याग कर पाओगे भगवान की कृपा से। इससे हम सबका जीवन भी सुंदर होगा और हमारे माध्यम से भगवान अगर चाहें, है ना, भगवत कृपा हो जाए तो जगत कल्याण भी हो जाएगा, है ना। हाँ जी, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, घर घर मंदिर हर मन मंदिर एवरीवन, हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स अब रिव्यूज की तरफ चलते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा या आप कुछ एक्सपीरियंस अपना बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो। हरी बोल।
हरी हरी बोल जी। हां जी, मुझे आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन, और आपने बड़े ही अच्छे से डीपली हमें पहले वाले वर्सेस भी और आज का जो श्लोक था वो भी समझाया। तो सच में मोना जी, जब हम प्रभु के इस रास्ते पर चले हैं और हम मतलब अपना आत्म चिंतन भी करते हैं, क्योंकि ये सब हमने इस सत्संग में ही सीखा जब से भगवत जी ने स्टार्ट करा है, सॉरी भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करा है और गोलोक एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से हम जुड़े हैं। तो मेन बात हमने ये सीखी, सबसे पहले तो हमने जो अपनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज थी उसको हमने जो है डिवोशन की तरफ मतलब ले जाने का प्रयास करा, मतलब जितना हमसे हो सका। तो मेरा कहने का भाव ये है कि आज जो वर्ष आपने हमें कराया, सच में जब हम प्रभु के बताए गए रास्ते पर चलते हैं तो इससे जो है हमारा ही इस रास्ते पर चलने में जो है हमारा ही कल्याण है, क्योंकि जब हम निस्वार्थ भाव से प्रभु की बताई गई जो भी बातें हैं उसका अनुसरण करते हैं और मैं से हम पर आते हैं, क्योंकि हमने ये समझा कि प्रभु को वही भक्त प्रिय हैं जो के मतलब सारे संसार को वासुदेव कुटुम्बकम का भाव लेकर चलते हैं, यानी राग द्वेष मेरा तेरा इन सब बातों से जब वो ऊपर उठ जाते हैं वही भक्त प्रभु को प्रिय लगते हैं। तो हमने भी इस सत्संग के माध्यम से मोना जी आपसे बहुत सी बातें सीखी हैं और उसे हम अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास कर रहे हैं कि हमें केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना है। भगवत गीता में ये पढ़ रहे हैं कि अर्जुन जो है जब वो मतलब उन्हें अब जब वो मोह में पड़ गए अपने रिश्तेदारों को देख के तो वो स्वार्थी हो गए, परंतु जब उन्होंने प्रभु की बताई गई बातों को समझा उसे अपने अंदर उतारा तो जो है उन्होंने अपने जीवन को सही दिशा की ओर मोड़ा और अपने कर्तव्य को समझा। तो हमने भी भगवद गीता से यही समझ रहे हैं कि हमें केवल और केवल दृढ़ निश्चय होकर प्रभु के बताए गए मार्ग पर चलना है और संभाव में रहना है। सच में जब हम मतलब प्रभु से ट्रू सेंस में जुड़ते हैं, प्रभु की बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो सच में मोना जी ये जो मटेरियल वर्ल्ड की जो भी हमारी डिजायर्स होती हैं, जो भी मतलब हमें लगता है कि ये चीज हमें मिलेगी तो इसमें इससे हमें खुशी मिलेगी, हमने ये अनुभव किया है कि ये जो खुशी होती है ये बिल्कुल और बिल्कुल बहुत थोड़े समय की होती है, टेम्प्रेरी होती है। अब हम जब मैं अपनी बात करूं तो जब हम मतलब थोड़ा माया में उलझ जाते हैं घर में कोई मतलब कोई ऐसा माहौल आ जाता है, परंतु झट से मतलब अंदर से जैसे प्रभु की आवाज आती है कि नहीं हमें इसमें और नहीं उलझना, हमें प्रभु के बताए गए रास्ते पर ही चलना है, उसी में जो है हमें ट्रू हैप्पीनेस मिल रही है, बाकी जो है बाकी सब टेम्परेरी। हरी बोल हरी बोल
हरी हरी बोल हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल रिव्यू नीना जी, ब्यूटीफुली आपने बहुत ही प्यारे ढंग से अच्छी तरह से हमें अपने एक्सपीरियंस के द्वारा समझाया है ना। देखो 2020 में सत्संग स्टार्ट हुआ था हमारा है ना, तो 3-4 साल हो जाएंगे हमें चलते हुए है ना, तो फिर भी अगर हम उलझे रहे है ना, फिर भी अगर हमने नहीं समझे। अब देखो अर्जुन है, बहादुर व्यक्ति है अर्जुन, कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, है ना, बहुत सारी दिव्य गुणों की भरमार है उनमें है ना, तो उनको गाइडेंस की जरूरत पड़गी भगवान की। और हमें क्या लगता है कि मुझे किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, मुझे सब आता है, और हम ना किसी की सुनना चाहते हैं है ना, और ना ही हम भगवान की सुनना चाहते हैं। हमें वही अपना मन घड़न जीवन जी, और हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या उस जीवन से मैं खुश हूँ, आंतर मंथन करना है। 5 मिनट अपने साथ बैठो, ऑब्जर्व करो कि क्या मैं खुश हूँ, आपको आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। हाँ जी, थैंक यू सो मच नीना जी। हाँ जी, कोई और जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स? हरी बोल
हरी बोल। बोला जी, पहले तो मैं सबसे माफी मांगती हूँ कि मैं बहुत ही दिनों बाद आज सेशन, तो मैंने बीच बीच में सुना लेकिन मैं रिव्यूज नहीं दे पाती थी, और थोड़ी मैं बिजी शेड्यूल था मेरा, कुछ चल रहा ना, तो इसलिए मैं सेशन में आ नहीं पाई, तो इसलिए मैं सॉरी फील करती हूँ। और हमेशा की तरह आपका सेशन बहुत ही, सत्संग बहुत ही अच्छा, और बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक वर्ड हमें समझाते हो, और जिससे हमारे अंदर बिल्कुल क्लैरिटी आती है। और जो आज का सेशन था, इससे मेरी लर्निंग है कि हमें जब हम कोई कर्म करते हैं तो हमें निष्काम भाव से वो कर्म करने हैं। हमें उस जैसे कोई भी कर्म करे तो उसको ये नहीं सोच के करे कि हमें क्या फल मिलेगा। अगर हम निष्काम भाव से करते हैं तो जो हमारी आत्मा है ना, वो परमात्मा को जान लेती है। और भगवान ने हमें पॉकेट मनी दी है, लेकिन हम लोग जो है ना वो कंजूस हैं, बनगे हुए। भगवान के लिए हम कुछ भी नहीं करते, और अगर हमें जरा सा भी थोड़ा ज्ञान हो जाता है तो हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। हमें डिवोशन एक्टिविटी करनी है। डिवोशन एक्टिविटी करने से क्या होता है कि हमारा मन शांत रहता है, और हमें अपने जो हमारे सेंसेस हैं उनको कंट्रोल में रखना है। अगर हमें लगे कभी भी कि बड़ी बार होता है कि सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, हमारे कंट्रोल में नहीं होती, कई बार हमें उसको कंट्रोल में करना है, और वो कैसे होगी, हमें चैंटिंग करेंगे। चैंटिंग करने से हम सिचुएशन को कंट्रोल में कर सकते हैं। और हमें जैसे बोलते हैं ना, हमें अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए, हमें अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ही रखना है। अगर कोई गलत करे तो हमें परेशान नहीं होना, हमें भगवान को याद करना है। जब हम कृष्णा को याद करते हैं तो हम बिल्कुल सच में, मैं अपनी कहूँ तो जब भी मैं कभी भी कोई मेरे को परेशानी हो तो मैं हर वक्त बांके बिहारी को याद करती हूँ, तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती हूँ। और हमें जब हम चैंटिंग करते हैं तो उससे हमें बहुत ही उत्तम रस मिलता है। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच उमा, आपने बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया, बहुत दिनों के बाद रिव्यू दिया। गोलोक एक्सप्रेस से हम जुड़े हैं है ना, लेकिन फिर भी अगर हमने समझे चीजों को कि हमें कहाँ शांति मिल रही है, हमें सत्संग में शांति मिलती है, भगवान की बातें सुनकर शांति मिलती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके शांति मिलती है, कि माया में उलझ के हमें शांति मिलती है ना, तो जब हमने दृढ़ निश्चय कर लिया, मतलब ये चैप्टर में यही चल रहा है कि अगर हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमें किस रास्ते में चलना है, किस बुद्धि के अकॉर्डिंगली हमें काम करना है, ये डिसाइड हमने करना है ना, ये चॉइस हमने बनानी है ना, तो जैसे हम चॉइस बना लेंगे तो उसके रिजल्ट भी हमें फिर अकॉर्डिंगली मिलते हैं। सिंपल बात है। और बिल्कुल जो गोलोक एक्सप्रेस का मॉडल है डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन, यही सबसे बेस्ट रास्ता हमें लगा। हम सबने यही है कि जो भी अपना डिस्ट्रक्टिव जो एक्टिविटीज हम लोग करते रहते थे, कि सोते रहते थे या फिर टीवी देखते रहना या गप्पे मारते रहना, उससे हमने क्या किया, उससे जो हमने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ थोड़ा सा रास्ता हमने अपना मोड़ा, अपना भगवान की तरफ रास्ता लिया है ना, तो अपने आप ही चेंजेस आई लाइफ में। फिर आगे की लेवल भगवान हमें समझाने लग जाते हैं कि ठीक है अब तुमने ये कर लिया, अब तुम अगला लेवल समझो है ना, उस तरफ हमारा ध्यान लग जाता है, फिर
उस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक है कि हमें क्या करना है, डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन की तरफ जाना है, सिंपल। चाहे सत्संग ना भी अटेंड करो, कभी किसी दिन कभी कोई ऐसी इमरजेंसी भी आ जाती है, लेकिन क्या करना है, मुझे एक घंटा अपने को देना ही देना है। चाहे सोने से पहले क्यों ना मैं मेडिटेशन करना पड़े या मुझे मंत्र जाप करना पड़े, है ना, तो अपने आप को वो टाइम देना ही देना। ये हम अगर डिसाइड कर लेते हैं, डिसाइड किसने करना है, ये हमने ही करना है ना। वैसे जिंदगी तो नहीं जीनी ना कि जैसे लाइफ हमें करवाती जा रही है वैसे हम करते जा रहे हैं, जैसे पहले की तरह हम लाइफ जीते थे, तो उसको चेंजेस हमने ही करना है। अगर हम वो लाइफ थोड़ा सा मोल्ड करेंगे, है ना, अच्छे संस्कार जीवन में डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली लाइफ भी फिर नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है, है ना। हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, कोई और जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स, हरी बोल।
थैंक यू मोना दी, थैंक यू सो मच। क्योंकि प्रभु कह रहे हैं कि कर्मों के रिजल्ट से, जो मतलब कि हमारे कर्म फल है, उनसे हमें आसक्ति नहीं बनानी है, उनसे अटैचमेंट नहीं रखनी है, हमें निरंतर पूरी डेडिकेशन से अपने कर्म पे ध्यान देना है कि हम अपने कर्म किस वे में कर रहे हैं, बेस्ट वे में कर रहे हैं कि गलत तरीके से कर रहे हैं, पूरी डेडिकेशन रखनी है और प्रभु के प्रति भी पूरा समर्पण भाव रखना है, उन पे विश्वास रखना है कि एक तो उन पे विश्वास रखना है, दूसरा अपने कर्मों पे ध्यान देना है कि हम सही से अपने कर्म करें, उनका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा है बुरा है कैसा भी होगा। जैसे मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस ये है कि पहले जैसे मेरा ये होता था कि फॉर एग्जांपल मैं घर पे ही हूँ, तो अपनी ड्यूटीज हैं जो प्रभु ने मुझे दी हैं मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरी फैमिली के लिए, तो पहले जब मैं करती थी तो मेरे मन में ना कभी ये जरूर आता था, नॉर्मली वाइफ का होता है कि यार मैं कर रही हूँ बट कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ, बच्चे मुझे इग्नोर करते हैं या मुझे मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं। बट जब से मैंने ये भागवत गीता सुनना शुरू करा है, तब से मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज रहती है कि मुझे मेरा कर्म बेस्ट वे में करना है, सामने वाला चाहे मेरे बच्चे हैं, चाहे मेरे हस्बैंड है, कोई भी फैमिली मेंबर्स है या जैसा भी है, वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे उसके साथ कुछ नहीं लेना देना। बच्चों का अपना कर्म है, मेरे हस्बैंड का अपना कर्म है, या फिर किसी और फैमिली मेंबर का अपना कर्म है, मुझे बस मेरे कर्मों की तरफ ध्यान देना है कि प्रभु ने मुझे जो ड्यूटीज दी हैं वो मैं बेस्ट वे में करूं, और रिजल्ट में मुझे एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं रखनी है। पहले मेरी एक्सपेक्टेशंस होती थी, बट राइट नाउ मेरी किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ना हस्बैंड से है, ना मेरे बच्चों से है, मुझे सिर्फ एक्सपेक्टेशंस है मेरे प्रभु से, मेरे श्रीहरि से, क्योंकि मैंने अब सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दिया है। मेरा जो मैंने अभी कर्म लिया है या जो मैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करती हूँ जो मैं पहले नहीं करती थी, अब मैं जो भी करती हूँ मेरा पूरा ध्यान उन्हीं को कि मैं इनको कैसे थोड़ा और बढ़ाऊं। कम तो मैं भगवान हरि करे कि मेरे कम ना हो बट बढ़ती जाए, और जितना मैं कर रही हूँ इतना भी अच्छे से करूँ और पूरी डेडिकेशन से करूँ, पूरे भाव से करूँ। हरी हरी बोल।
हाँ, तो वही ये इस श्लोक का, थैंक यू सो मच पूजा जी, वैसे तो बोलने लग गई। तो देखो ये जो आज मैंने पढ़ाया बुद्धि योग के बारे में, तो एग्जैक्ट आप वही कर रहे हो ना, एग्जैक्ट वही कर रहे हो, है ना। तो ये मैंने आपको वर्ड्स में समझा दिया, है ना, जो निष्काम भाव से कर्म करना, तो उससे क्या आपकी लाइफ में थोड़ा बेनिफिट हुआ पूजा जी, पहले की लाइफ और अभी की लाइफ से आप थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, तो आपको क्या लगता है?
जी हरी हरी बोल दी, बहुत फर्क पड़ा है। एक मतलब कि मैं ना सही पूछो ना तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, मतलब कि पहले की पूजा थी जो आज की पूजा है उसमें काफी फर्क है। पहले मेरा रोना धोना चालू हो जाता था, कोई बात हुई नहीं रोते रहो, कोई बात हुई नहीं टेंशन लेके बैठ जाओ, 10-15-20 दिन सोचते रहो, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, ऐसे हो गया। अब जो जैसे आपने बोले ना फॉरगेटफुल, मतलब कि जो हुआ उसको जाने दो, जो हो गया उसको छोड़ दो, और आगे जो करना है, जो हम कर रहे हैं उसको तरीके से करें, उसको सही से करें, और जो होगा वो श्री हरि देख लेंगे, अगर कुछ बुरा होगा तो वो देख लेंगे, अच्छा होगा तो थैंक्स, मैं उनको थैंक्स बोलती हूँ। मेरे डेली लाइफ में ना मैं कुछ भी करती हूँ अच्छा या बुरा, छोटी सी छोटी बात होती है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे देती, जैसे मैं किचन में लगी हूँ, चाय रखी है, ये कर रहा है, वो कर रही हूँ, चाय उबलने से बच गई, मेरा ध्यान उधर से लगे, ओ थैंक यू श्री, मेरी चाय बचा दी, मेरी चाय नहीं उबली। मतलब कि मैं कह रही हूँ कि मेरी हर बात में श्री हरि शामिल है, हर बात में उनको थैंक यू बोलती, कुछ अच्छा होता तो उनको थैंक यू बोलती, थैंक यू श्री हरि आपने ऐसा कर दिया, थैंक यू हरी ऐसा हो गया। लगी ये बहुत चेंजेस है, और ये बहुत प्यारी चेंजेस है, मैं मतलब कि मैं बता नहीं सकती, एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि मैं खुद में कितना हैप्पी या रिलीव या काम फील करती हूँ। मैं बहुत बहुत फर्क है मेरी में पहले वाली पूजा में और आज की पूजा में। हरी हरी बोल।
कुछ अनफेवरेबल सिचुएशन आ जाती है फिर क्या करते हो?
मैं दी मैं ये करती हूँ कि मैं श्री हरि को बोलती हूँ, मैं हस्बैंड से थोड़ी बात करती हूँ, अगर वो समझ आते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो मैं श्री हरि से जाके बात करती हूँ। तो मैं उनको बोलती हूँ राधे कृष्ण प्लीज हेल्प मी, मेरे से ये जो सही ये सिचुएशन है ना, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ से निकल रही है, मुझसे जितना हो सकता था मैंने हैंडल करी बट अब इससे ज्यादा मुझसे नहीं हो रही, अब आप ही देखो। बट मुझे उस चीज की ना टेंशन नहीं होती, जब अनफेवरेबल सिचुएशन आती है ना मुझे टेंशन नहीं होती, पहले बहुत टेंशन होती अब नहीं होती है। फिर मैं उनको बोल देती हूँ ना, जब मैं उनको बोल दिया ना मैंने, फिर उसके बाद तो मैं सोचती भी नहीं, जो होगा जैसा होगा, अगर अच्छा हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई मुझको टेंशन नहीं लेती मैं, ना दुख मनाने बैठती। पहले तो कंप्लेंट्स ही करती रहती थी, भगवान आपने ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, ऐसा ही होना था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ये है वो। अब नहीं मैं बोलती, अब मैं बोलती हूँ, सोचती हूँ कि शायद मेरे कर्म वैसे होंगे या कुछ ऐसा हुआ होगा। जैसे आप बताते हैं कि हमारे हम अपनी लाइफ में जो भी देखते हैं, जो भी कभी फेवरेबल या अनफेवरेबल सिचुएशंस आती हैं, वो सब हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग आती हैं। तो मैं उस चीज को माइंड में रखती हूँ, उस चीज मतलब कि उससे बाहर आ जाती हूँ, टेंशन नहीं लेती, ज्यादा सोचती नहीं, बस श्री हरि को बोल देती हूँ। मैंने कहा आप देख लो जैसे आपको ठीक लगे। हाँ जी हरी हरि बोल।
जी हरी बोल। थैंक यू सो मच पूजा जी, जो आज मैंने वर्स आपको समझाया ना, अगर हम इसके अकॉर्डिंगली चलते हैं ना, अब ये पूजा जी का तीसरा सेशन है, तीसरी बार भगवद गीता सुन रही है ना, तो इन्होंने किया क्या, सुना पहले, सुना है ना, उसके बाद इम्प्लीमेंट, बाद का प्रोसेस होता है, उसके बाद इम्प्लीमेंट किया तो जो रिजल्ट आपके सामने। तो इन्होंने क्या किया, सेम एग्जैक्ट जो मैंने आज समझाया 49th वर्स में, एग्जैक्ट बुद्धि योग का ये यूज कर रही है, मतलब के ऑटोमेटिकली वो उस योग पे ही चलता है इंसान अगर हम भगवान की बातों पे चलते हैं तो, है ना। फेवरेबल सिचुएशन आती है तो भी हमें हैंडल करने आ जाता है, जो अनफेवरेबल सिचुएशन आ जाती है, थोड़ी कि अनफेवरेबल सिचुएशंस नहीं आएंगी या हमें गुस्सा नहीं आएगा, ऐसा जो भी सोचते हैं ना लोग कि अगर ये भक्ति पे मार्ग पे चल रहा है तब इसको गुस्सा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। फिर उसके युद्ध बदल जाते हैं, युद्ध तो फिर भी चलेगा ही, जो ये महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ अर्जुन के जीवन में भगवद गीता के बाद ही हुआ ना, ऐसा थोड़ी हुआ कि अब उस भगवान ने बोला चलो तुम्हें भगवद गीता सुना दी मैंने, अब तुम ऐसा करो जंगलों में चले जाओ बस वहां पे भक्ति करते रहो, मंत्र जाप करते रहो, ऐसे बोला क्या? यही बोला ना कि तुम अब अपने कर्तव्य को करो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली, है ना। तो युद्ध खत्म नहीं होते हैं जीवन में। हाँ जी बोलिए पूजा जी।
एक्चुअली जैसे अभी आपने गुस्से वाली बात करी तो सेम हियर, जैसे मुझे पहले कंपैरेटिवली मैं अपना दिखाती हूँ कि गुस्सा मुझे पहले बहुत आता था, कोई भी जैसे अनफेवरेबल सिचुएशन है ना, सारी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकलती थी, तो मैं उनके ऊपर हर किसी ना किसी बात पे ना उनपे चिल्ला देती थी। हस्बैंड से भी कोई बात होगी 20-25 दिन बस रोट के बैठ जाओ, बात ना करो, मुंह खुला के बैठे रहो, उनसे उनको ना बात करो, फटाफट ऐसे काम करो वैसे काम। बच्चे हमारे अभी बहुत बड़े नहीं हुए हैं, वो अभी उनकी मिडल एज चल रही है, वो बढ़ रहे हैं अभी, तो बच्चे कभी ना कभी कोई ऐसी बात कर भी देते हैं। अब जरूरी नहीं कि हम ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो हमें गुस्सा नहीं आएगा, आता है बट कंपैरेटिवली कम आता है। बच्चे कभी कभार कोई वैसा कर दें तो बोलना भी पड़ता है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं तू अभी इतना कुछ कर रही है तभी तेरे को बड़ा गुस्सा आता है। मैंने कहा यार आप कंपैरिजन देखो, पहले मैं हर बात पे बच्चों पे चीखती चिल्लाती थी, आप पे आपके साथ कोई बात होती थी 20-22 दिन आपको बुलाती नहीं थी, पर राइट नाउ देखो, पहली बात तो मैं आर्गुमेंट करती नहीं किसी से भी, बच्चों से भी नहीं, हस्बैंड से भी नहीं, मैं आर्गुमेंट किसी से नहीं, मैं आर्गुमेंट छोड़ दिया, आर्गुमेंट करती नहीं। और इन केस अगर कभी कुछ ऐसा हो भी जाता है, फैमिली है, गृहस्थी है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, बट मैं उस चीज को पकड़ के नहीं बैठती। पहले मैं पकड़ के बैठती थी, अब मैं पकड़ के नहीं बैठती। आफ्टर हाफ एन आवर मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हूँ कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये नहीं है कि गुस्सा नहीं आता, आता है बट परसेंटेज में कम होता है। पहले बच्चों पे हाथ भी छोटे हैं तो उस पे हाथ भी उठ जाता था, बट अब नहीं। तो हस्बैंड को बोलते हैं यार तेरे को अभी भी गुस्सा बड़ा आता है। मैंने कहा कंपैरिजन तो देखो पहले कितना आता था, क्या करती थी, क्या एक्टिविटीज करती थी, अभी देखो आप। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हाँ जी, तो बिल्कुल ये सबसे पहला ही ये वाला पॉइंट आता है ना कि जब भी हम भक्ति के रास्ते में बढ़ते हैं ना, तो 1-2 साल तो हमारे इसी में निकलते हैं कि लोग हमें यही बोलते रहते हैं कि तुम्हें भगवत गीता पढ़ने का क्या ही फायदा हुआ, पहले तो हमारे अपने बच्चे अपने हस्बैंड ही बोल रहे होते हैं, है ना, फिर आसपास के लोग भी बोलते हैं कि तुम्हारे गुस्से का तो कोई असर नहीं हुआ, तुम्हें भगवत गीता पढ़ने का क्या फायदा हुआ। जो हम फालतू का गुस्सा करते थे ना बच्चों में, हस्बैंड के साथ, फालतू चीजों में, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते रहते थे, ना, कम से कम वो खत्म हो जाता है। मैं अपना जीवन में देखो तो ये वाला गुस्सा तो मेरा टोटली खत्म है ना, जो फालतू में उलझे रहते थे छोटी-छोटी बातों पे, अननेसेसरली दूसरों में उलझ के हम अपनी जीवन खराब कर देते हैं फ्रेंड्स, है ना। अपने अंदर तो कभी झांकते ही नहीं है, तो ये हमारी यात्रा अंदर की तरफ मुड़ जाती है ना फ्रेंड। एक्चुअली जीवन तब हमारा सुधरता है या बदलता है, ये नहीं है कि हमारा गुस्सा नहीं कंट्रोल में आता है, चीजें सब कंट्रोल में आती है, हर कुछ हर डेमोनिक क्वालिटीज हम सुधार पाते हैं, लेकिन प्रतिशत में अगर हम अपने आप को देखें तो हम लोग बहुत इंप्रूव किया होते हैं हम लोगों ने इस रास्ते में चलते हुए। जो फालतू बोलते रहते थे वहां से हटके हमें समझ आ जाता है कि एक्चुअली चीजें क्या है और हमें कहाँ पे अपना दिमाग लगाना, क्यों मेरे को फालतू चीजों में उलझना। बच्चों की अपनी एक जर्नी है, मेरा जीवन में सब कुछ हो गया तो उनके लिए क्यों नहीं भगवान ने सोचा होगा, तो बहुत चीजें माइंड में आती हैं, तो वो हम जो हर वक्त बोलते रहते हैं और थोड़ा सा बच्चों को भी स्पेस देना सीख जाते हैं और एक्चुअली फिर सही के लिए युद्ध करते हैं हम। मैं ये बोलना चाह रही थी एक्चुअली कि जैसे अर्जुन ने सही के लिए साथ खड़ा हुआ ना, तो हमें भी फिर लगता है कि नहीं यार मुझे राइट चीजें करनी है लाइफ में, तो ना बुरा कुछ सहना है ना कुछ बुरा करना है, सिंपल बात है। ठीक है, जहां पे आपने 100 बातें सुन ली, 101 बार तो आपको बोलना ही पड़ता है, फिर सिंपल बात है, तो बोलना ही पड़ता है, जहां बोलना है वो बोलना ही बोलना, गुस्सा जहां पे दिखाना है वहां पे दिखाना है, लेकिन फालतू छोटी-छोटी बातों में नहीं उलझे रहना, सिंपल फ्रेंड्स, है ना। थैंक यू सो मच पूजा जी। तो ठीक है, फिर हम भजन की तरफ चलते हैं। किरण जी, आज आपकी भजन की टर्न है, आप भजन गा सकते हो। हरी बोल।
हरी हरी बोल मोनल जी, हरी हरी बोल एवरीवन। आज का सत्संग भी बहुत ज्ञान वाला था, बहुत डिवाइन था हमेशा की तरह। तो आज के वर्ष से भी आपने और पूजा जी के रिव्यू ने बहुत कुछ, तो ये सब भी एक दूसरे से कंपेयर ही है। मैं देखती हूँ कि ये वाली बात मेरे से रिलेट करती है, ये वाली बात ऐसे होगी, तो वो ये परसेंटेज में गुस्सा बहुत कम है, पर जहाँ करना है वहां करना भी पड़ता है। बच्चों का ही ले लो तो सही बात है, वहां अगर उनको पढ़ते नहीं देखे तो वो कुछ भी इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं, या फोन पे लगे हैं या टीवी पे लगे हैं, तो फिर वहां पे हमारा डांटना या उनके लिए बोलना वो राइट भी होता है। तो प्रभु, मैं सबसे पहले तो यही सोचती हूँ कि प्रभु क्या है। प्रभु विश्वास है। अगर हमने विश्वास कर लिया है इस सत्संग के माध्यम से कि हरि हैं, भागवत के स्टूडेंट हैं हम, तो हरि हैं, तो फिर डिवाइन सत्संग सुन रहे हैं हम, तो फिर उनपे हमें इफ वटनी है, तर्क कोई नहीं करना, हमें जो सुना है जो हम पढ़ रहे हैं तो फिर उस पे हमें अमल करना है, विचार करना है कि इस पे आज ये ज्ञान मिला मेरे को तो मैं कहाँ रॉन्ग थी। अगर कोई सिचुएशन आ रही है तो खुद को देखना पड़ता है, हमें राइट और रॉन्ग का, मैं कह रही हूँ, नॉलेज हो गई है, पता तो मुझे खुद का ही पता नहीं था, मैं दूसरों की गलतियां सुधारने पे लगी हुई थी। आज सत्संग के माध्यम से मेरे को पता है मुझे खुद को सुधारना है, भाई सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, कर्म करने हैं शुद्ध, अच्छे से अपनी ड्यूटी करनी है, बाकी हरी पे छोड़ देनी है, कि ये नहीं सोचना ये किया तो ये मिलेगा वो मिलेगा। हरी हरी बोल। अब मैं भजन की तरफ बढ़ती हूँ। बोल बांके बिहारी लाल की जय। यही विश्वास है जो मैं आज भजन गा रही हूँ और मेरे दिल में भी सिर्फ यही है। जग में सांचो तेरा नाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो राधा का श्याम, हे राम हे राम हे राम हे राम, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, इस जग के सारे काम, हे राम हे राम हे राम हे राम। तू यज्ञ दाता विश्व विधाता, तू जग दाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम, हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में सांचो तेरा नाम, हे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 हरे।
थैंक यू सो मच
किरण जी, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
संभवामि युगे।
जय श्री राधे कृष्ण।